अध्ययन लेख 50। इस लेख का अध्ययन 10 फरवरी से 16 फरवरी के दौरान किया जाएगा। विषय: यहोवा ने किया आपके छुटकारे का इंतजाम। ये लेख लेव्य व्यवस्था 25 के 10 पर आधारित है, जहां लिखा है, तुम देश के सभी निवासियों के लिए छुटकारे का ऐलान करना। गीत 22। स्वर्ग में राज शुरू हुआ, अब धरती पर आए हैद हुआ। लेख की एक झलक। पुराने जमाने में यहोवा ने इसराइलियों के लिए एक खास इंतजाम किया था, जिसे छुटकारे का साल कहा जाता था। आज मसीही मूसा का कानून तो नहीं मानते, लेकिन हमें छुटकारे के उस इंतजाम के बारे में जानना चाहिए। इस लेख में हम उस इंतजाम के बारे में सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यहोवा ने हमारे छुटकारे के लिए इससे मिलता जुलता कौन सा इंतजाम किया है और इससे फायदा पाने के लिए हमें क्या करना होगा। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क: कुछ लोग किस मौके पर जश्न मनाते हैं? सवाल ख: लूका 4:16-18 में यीशु ने किस बारे में बताया? कुछ देशों में जब एक राजा या रानी की हुकूमत का 50वां साल पूरा होता है तो इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चारों तरफ खुशी का समा होता है और लोग पूरे दिन या हफ्ते भर जश्न मनाते हैं। कभी कभी तो जश्न का सिलसिला इससे भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन फिर ये खत्म हो जाता है और लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। प्राचीन समय में भी हर 50वें साल इसराइली जश्न मनाते थे, जो साल भर चलता था। इस इंतजाम को छुटकारे का साल कहा जाता था। हम इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज यहोवा ने हमारे लिए भी एक बढ़िया इंतजाम किया है। दरअसल ये इंतजाम प्राचीन इसराइल के इंतजाम से भी अच्छा है। वो इसलिए कि इसके तहत हमें जो छुटकारा मिलेगा वो हमेशा के लिए होगा। इससे हमें अभी से फायदा हो रहा है। इस बढ़िया इंतजाम के बारे में यीशु ने भी बताया था। लूका 4:16-18 में लिखा है, फिर वो नासरत गया जहां उसकी परवरिश हुई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक वो सब्त के दिन वहां के सभागार में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। भविष्यवक्ता यशाया का खर्रा उसके हाथ में दिया गया और उसने खर्रा खोला और वो जगह ढूंढकर निकाली जहां ये लिखा था, यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं बंदियों को रिहाई का, अंधों को आंखों की रोशनी पाने का और कुचले हुओं को आजादी का संदेश दूं। कुछ और जानकारी: छुटकारे का साल क्या होता था? यहोवा ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी कि वो हर 50वें साल एक खास त्योहार मनाएं। इसे छुटकारे का साल कहा जाता था। जब से इसराइलियों ने वादा किए गए देश में कदम रखा, उन्हें 6 साल तक बीज बोना था, जमीन को सींचना था और फसल काटनी थी, लेकिन 7वां साल सब्त का साल होता था। इस दौरान उन्हें ना तो बीज बोना था और ना ही कटाई छटाई करनी थी। 7 साल के इस दौर का अगर 7 गुना किया जाए तो 49 साल होते हैं, और अगला साल 50वां साल होता, यानी छुटकारे का साल। जिस साल इसराइली वादा किए गए देश में आए, उस साल से अगर हम हिसाब लगाएं तो पहला छुटकारे का साल ईसा पूर्व 1424 में तिशरी महीने में पड़ा। वापस लेख पर। पैराग्राफ 3। सवाल: जैसा कि लेव्य व्यवस्था 25:8-12 में बताया गया है, छुटकारे के साल से इसराइलियों को क्या फायदा होता था? यीशु जिस रिहाई की बात कर रहा था उसे अच्छी तरह समझने के लिए आइए पहले छुटकारे के उस इंतजाम पर गौर करें जो परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए किया था। यहोवा ने उनसे कहा, तुम 50वें साल को पवित्र मानना और देश के सभी निवासियों के लिए छुटकारे का ऐलान करना। तुम सबके लिए 50वां साल छुटकारे का साल होगा। उस साल तुम में से हर किसी को उसकी बेची हुई जायदाद लौटा दी जाएगी। हर कोई अपने परिवार के पास लौट जाए। लेव्य व्यवस्था 25:8-12 में लिखा है, तुम 7 शब्द के साल गिनना, यानी 7 गुना 7 साल। इस तरह जब कुल मिलाकर 49 साल पूरे होंगे तो उस 49वें साल के 7वें महीने के 10वें दिन, यानी प्रायश्चित के दिन, तुम अपने देश में जोर जोर से नरसिंगा फूंकना। देश का कोना कोना नरसिंगे की आवाज से गूंज उठे। तुम 50वें साल को पवित्र मानना और देश के सभी निवासियों के लिए छुटकारे का ऐलान करना। तुम सबके लिए 50वां साल छुटकारे का साल होगा। उस साल तुम में से हर किसी को उसकी बेची हुई जायदाद लौटा दी जाएगी। हर कोई अपने परिवार के पास लौट जाए। तुम्हारे लिए 50वां साल छुटकारे का साल होगा। उस साल तुम जमीन पर ना बीज बोना और ना ही पिछली फसल की कटाई के बचे दानों से उगने वाले अनाज की कटाई करना और अंगूरों के बाग से जिसकी छटाई नहीं की जाती अंगूर मत बटोरना, क्योंकि 50वां साल छुटकारे का साल है। तुम उसे पवित्र साल मानना। उस साल तुम सिर्फ वो चीजें खा सकते हो जो जमीन पर अपने आप उगती हैं। पिछले लेख में हमने देखा था कि हर हफ्ते सब्त मनाने से इसराइलियों को फायदा हुआ, लेकिन छुटकारे के साल से उन्हें क्या फायदा होता? मान लीजिए एक इसराइली कर्ज में डूबा है। कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूरन अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, लेकिन फिर छुटकारे का साल आता है और उसे उसकी जायदाद लौटा दी जाती है। अब वह अपनी जमीन अपने बच्चों के लिए बचाकर रख सकता है। एक और हालात पर ध्यान दीजिए। एक इसराइली बड़ी मुसीबत में है। उस पर बहुत बड़ा कर्ज है और उसे उतारने के लिए उसे अपने बच्चे को या फिर खुद को गुलामी में बेचना पड़ता है, लेकिन छुटकारे के साल वो दास अपने परिवार के पास लौट जाता है। इस इंतजाम की वजह से कोई भी हमेशा के लिए दास नहीं बना रहता। सच में यहोवा को अपने लोगों की कितनी परवाह थी। पैराग्राफ 3 से संबंधित तस्वीर के बारे में। छुटकारे के साल गुलामों को आजाद किया गया है और वो अपने घर परिवार के पास लौट आए हैं। पैराग्राफ 3 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। इसराइल में छुटकारे के साल खुशियां मनाई जाती थी, क्योंकि जो लोग दास थे वो अपने घर और परिवार के पास लौट आते थे। पैराग्राफ 4 और 5। सवाल, हमें छुटकारे के साल में क्यों दिलचस्पी लेनी चाहिए? छुटकारे के साल का एक और फायदा क्या होता था? यहोवा ने समझाया, तुम्हारे बीच कोई गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश विरासत में देने वाला है वहां यहोवा तुम्हें जरूर आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 15:4। इस इंतजाम की वजह से इसराइल में गरीबी नहीं होती थी, लेकिन आज दुनिया में हालात कितने अलग हैं। अमीर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं जबकि गरीब गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। मसीही होने के नाते हम मूसा के कानून के अधीन नहीं हैं। इस वजह से हम छुटकारे के साल के इस नियम से बंधे हुए नहीं हैं कि दासों को आजाद करना है, उनके कर्ज माफ करने हैं या लोगों को उनकी जायदाद लौटानी है। लेकिन फिर भी हमें छुटकारे के इंतजाम में दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह यहोवा ने इसराइल में छुटकारे का इंतजाम किया था, उसी तरह उसने आज हमारे लिए भी रिहाई या छुटकारे का इंतजाम किया है। यीशु ने रिहाई का ऐलान किया। पैराग्राफ 6। सवाल, सभी इंसानों को किस गुलामी से आजाद किए जाने की जरूरत है? सभी इंसानों को छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि हम सब पाप की गुलामी में जकड़े हुए हैं। पापी होने की वजह से हम बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। इस सच्चाई का एहसास हमें तब होता है जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं या अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें तब भी इस बात का एहसास होता है जब हम कोई पाप कर बैठते हैं। प्रेषित पौलुस ने कहा कि वो पाप के उस कानून का गुलाम है जो उसके शरीर में है। उसने ये भी कहा, मैं कैसा लाचार इंसान हूं, मुझे इस शरीर से जो मर रहा है कौन छुड़ाएगा? रोमियो 7:23-24। पैराग्राफ 7। सवाल, यशाया ने छुटकारे के बारे में क्या भविष्यवाणी की? हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें पाप की गुलामी से आजाद करने का एक रास्ता निकाला। ये छुटकारा यीशु के जरिए मुमकिन होता। यीशु के धरती पर आने से करीब 700 साल पहले यशाया ने एक महान छुटकारे की भविष्यवाणी की। इसराइलियों को छुटकारे के साल से जो फायदा हुआ, उससे कहीं ज्यादा फायदा हमें इस महान छुटकारे से होगा। यशाया ने लिखा, सारे जहान के मालिक यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है। यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दीन लोगों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं टूटे मन वालों की मरमपट्टी करूं, बंदियों को रिहाई का पैगाम दूं। यशाया 61 का 1। ये भविष्यवाणी किसके बारे में थी, आइए देखें। पैराग्राफ 8। सवाल, यशाया ने छुटकारे के बारे में जो भविष्यवाणी की वो किसके बारे में थी? जब यीशु ने धरती पर अपनी सेवा शुरू की तब ये अहम भविष्यवाणी पूरी होने लगी। यीशु अपने शहर नासरत के सभागार में गया और वहां मौजूद यहूदियों के सामने वही शब्द पढ़े जो यशाया की भविष्यवाणी में लिखे थे। उसने कहा, यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं बंदियों को रिहाई का, अंधों को आंखों की रोशनी पाने का और कुचले हुओं को आजादी का संदेश दूं और यहोवा की मंजूरी पाने के साल का प्रचार करूं। लूका 4 का 16-19। फिर यीशु ने जाहिर किया कि ये भविष्यवाणी उसके बारे में थी, लेकिन सवाल है कि यीशु ने इस भविष्यवाणी को कैसे पूरा किया। सबसे पहले किन लोगों को रिहाई मिली? पैराग्राफ 9। सवाल, यीशु के दिनों में लोग किससे छुटकारा पाना चाहते थे? यशाया ने जिस रिहाई की भविष्यवाणी की थी वो यीशु के समय में पूरी होने लगी। हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खुद यीशु ने कहा, ये वचन जो तुमने अभी अभी सुना आज पूरा हुआ है। लूका 4 का 21। यीशु की बात सुनने वाले कई लोग रोमी हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते थे। उनकी सोच शायद उन दो आदमियों की तरह थी जिन्होंने यीशु के बारे में कहा था, हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये वही है जो इसराइल को छुटकारा दिलाएगा। लूका 24 का 13-21। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु ने कभी अपने चेलों को रोम की बेरहम सरकार के खिलाफ नहीं भड़काया। इसके बजाय उसने बढ़ावा दिया, जो सम्राट का है वो सम्राट को चुकाओ। मत्ती 22 का 21। तो फिर यीशु ने किस मायने में लोगों को छुटकारा दिलाया? पैराग्राफ 8 और 9 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, यीशु नासरत के सभागार में रिहाई का ऐलान करता है। पैराग्राफ 10। सवाल, यीशु ने किस बात से लोगों को छुटकारा दिलाया? यीशु ने दो तरीकों से छुटकारा दिलाया। पहला, उसने धर्मगुरुओं की शिक्षाओं और परंपराओं से लोगों को छुटकारा दिलाया जो उन पर एक बोझ की तरह थीं। बहुत से यहूदी ना चाहते हुए भी इन रीति रिवाजों और झूठी शिक्षाओं को मान रहे थे। धर्मगुरुओं का कहना था कि वो लोगों को परमेश्वर की राह पर चलना सिखा रहे हैं, मगर असल में वो ऐसे थे मानो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। इन धर्मगुरुओं ने मसीह और उसकी सिखाई सच्चाइयों को ठुकरा कर दरअसल परमेश्वर को ठुकरा दिया था। इस मायने में वो अंधकार में थे और उनका ये पाप कभी माफ नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ यीशु ने नम्र लोगों को सच्चाई सिखाई और उनके लिए एक अच्छी मिसाल रखी। इस तरह उसने दिखाया कि वो कैसे झूठी शिक्षाओं से आजाद हो सकते हैं। पैराग्राफ 11। सवाल, यीशु ने और किस तरीके से लोगों को छुटकारा दिलाया? दूसरा तरीका है, यीशु ने हमारे लिए पाप की गुलामी से छुटकारा पाने का रास्ता निकाला। यीशु ने अपनी जान कुर्बान की, इसलिए जो कोई उसके बलिदान पर विश्वास करता है उसके पाप माफ किए जा सकते हैं। यीशु ने कहा, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। यूहन्ना 8 का 36। ये आजादी उस आजादी से कहीं बेहतर है जो इसराइलियों को छुटकारे के साल मिलती थी। वो कैसे? छुटकारे के साल दासों को आजाद तो कर दिया जाता था, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके हालात हमेशा अच्छे ही रहें। हो सकता है हालात से मजबूर होकर किसी को दोबारा गुलाम बनना पड़े। अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी वो मौत की जकड़ से नहीं बच सकता था, लेकिन यीशु जो छुटकारा दिलाएगा वो हमेशा के लिए होगा। पैराग्राफ 12। सवाल, किन लोगों को सबसे पहले वो रिहाई मिली जिसका जिक्र यीशु ने किया था? ईसवी सन 33 के पिंतेकुस्त के दिन यहोवा ने प्रेषितों और दूसरे वफादार सेवकों पर पवित्र शक्ति उंडेलकर उनका अभिषेक किया। यहोवा ने उन्हें अपने बेटों के रूप में गोद ले लिया। इस वजह से आगे चलकर उन्हें स्वर्ग में जीवन दिया जाता और वो यीशु के साथ राज करते। इन लोगों को सबसे पहले वो रिहाई मिली जिसका जिक्र यीशु ने नासरत के सभाघर में किया था। अब वो धर्मगुरुओं की झूठी शिक्षाओं और परंपराओं के गुलाम नहीं थे। परमेश्वर की नज़र में वो पाप और मौत की गुलामी से भी आज़ाद हो चुके थे। ईस्वी सन 33 में परमेश्वर ने जिस छुटकारे का इंतजाम शुरू किया था वो मसीह के हजार साल के राज के आखिर में खत्म होगा। इस दौरान कौन कौन से बढ़िया काम किए जाएंगे? लाखों लोगों के लिए छुटकारा। पैराग्राफ 13 और 14। सवाल, अभिषिक्त मसीहों के अलावा और किन लोगों को वो रिहाई मिल सकती है जिसके बारे में यीशु ने बताया था? आज हर राष्ट्र से लाखों लोग यीशु की दूसरी भीड़ों में से हैं। यूहन्ना 10:16। इन नेक दिल लोगों को परमेश्वर ने यीशु के साथ स्वर्ग में राज करने का बुलावा नहीं दिया है। इसके बजाय, जैसा कि बाइबल बताती है, उनकी आशा धरती पर हमेशा जीने की है। क्या आप भी यही आशा रखते हैं? भविष्य में मिलने वाली आशीषों के अलावा आपको आज भी ऐसी कुछ आशीषें मिल रही हैं जिनका आनंद अभिषिक्त मसीही उठाते हैं। जैसे यीशु के फिरौती बलिदान पर विश्वास करने से आपको अपने पापों की माफी मिल सकती है। आप यहोवा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और आपको एक साफ जमीर भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको झूठी शिक्षाओं से भी आजादी मिल सकती है। यीशु ने कहा था, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यूहन्ना 8:32। ये आजादी वाकई लाजवाब है। पैराग्राफ 15। सवाल, बहुत जल्द सभी इंसान किस आजादी की उम्मीद कर सकते हैं और उन्हें क्या आशीषें मिलेंगी? आप एक और बढ़िया किस्म की आजादी की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत जल्द यीशु सभी झूठे धर्मों और भ्रष्ट सरकारों को मिटा देगा। इस दौरान हम यकीन रख सकते हैं कि परमेश्वर एक बड़ी भीड़ की हिफाजत करेगा जो वफादारी से उसकी सेवा कर रही है। फिर वो बड़ी भीड़ के लोगों को फिरदौस में खुशी खुशी जीने का मौका देगा। यही नहीं, मरे हुए लाखों लोगों को धरती पर दोबारा जिंदा किया जाएगा और उनके सामने भी पाप की गुलामी से आजादी पाने का मौका होगा। पैराग्राफ 16। सवाल, भविष्य में पूरी मानव जाति को कौन सी बढ़िया आजादी मिलेगी? हजार साल के राज में यीशु और उसके साथी राजा अच्छी सेहत पाने और यहोवा के साथ बढ़िया रिश्ता बनाने में इंसानों की मदद करेंगे। नतीजा, धरती पर यहोवा के वफादार सेवक परिपूर्ण हो जाएंगे और पाप की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। उस वक्त माहौल कुछ वैसा ही होगा जैसा इसराइल में छुटकारे के साल होता था। वो समय कितना अच्छा होगा। पैराग्राफ 17। सवाल, यशाया 65:21-23 के मुताबिक यहोवा के लोगों की जिंदगी कैसी होगी? यशाया 65:21-23 में बताया गया है कि भविष्य में जिंदगी कैसी होगी। वहां लिखा है, वो घर बनाकर उसमें बसेंगे, अंगूरों के बाग लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो घर बनाए और कोई दूसरा उसमें रहे, वो बाग लगाएं और कोई दूसरा उसका फल खाए, क्योंकि मेरे लोगों की उम्र पेड़ों के समान होगी। मेरे चुने हुए अपनी मेहनत के फल का पूरा पूरा मजा लेंगे। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ना उनके बच्चे दुख उठाने के लिए पैदा होंगे, क्योंकि वो और उनके बच्चे यहोवा का वंश हैं जिन्हें उसने आशीष दी है। उस वक्त कोई आलसी नहीं होगा। इसके बजाय बाइबल बताती है कि हर किसी के पास काम होगा और उसे अपने काम से खुशी मिलेगी। हम पूरा यकीन रख सकते हैं कि हजार साल के खत्म होने पर सृष्टि भी भ्रष्टता की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर के बच्चे होने की शानदार आजादी पाएगी। रोमियो 8:21। पैराग्राफ 18। सवाल, हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा? यहोवा ने बीते समय में इस बात का ध्यान रखा था कि इसराइलियों के पास काम और आराम दोनों के लिए वक्त हो। हम यकीन रख सकते हैं कि मसीह के हजार साल के दौरान भी वो इस बात का ध्यान रखेगा। उस वक्त यहोवा की उपासना के लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं होगी। आज हमारी खुशी यहोवा की उपासना से जुड़ी हुई है और नई दुनिया में भी ये बात सच होगी। हम उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब सभी वफादार इंसान अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे और उन्हें अपने काम से बहुत खुशी मिलेगी। सच में हमारे आगे क्या ही उज्ज्वल भविष्य है। कुछ और जानकारी। छुटकारे के लिए यहोवा का इंतजाम। ईसवी सन 30, यीशु नासरत के सभागार में रिहाई का ऐलान करता है। ईसवी सन 33, छुटकारे का इंतजाम तब शुरू हुआ जब यहोवा ने मसीह के चेलों का अभिषेक किया। आज छुटकारे के इस इंतजाम से अभिषेक जनों को कई आशीषें मिल रही हैं। हजार साल में, मसीह के हजार साल के राज में इंसानों को पाप और अपरिपूर्णता से छुटकारा मिलेगा। हजार साल के आखिर में छुटकारे का इंतजाम खत्म होगा और इंसानों को पाप और मौत से पूरी तरह रिहाई मिलेगी। वापस लेख पर, आप क्या जवाब देंगे? छुटकारे का साल क्या था और इस इंतजाम से इसराइलियों को क्या फायदा होता था? यहोवा ने किन तरीकों से अभिषिक्त जनों को छुटकारा दिलाया है? यहोवा किस तरह दूसरी भेड़ों को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा? गीत 142, अपनी आशा कसकर थामे रहें। लेख समाप्त।